ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयो मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्वेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंग्रयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम मंदिर की व्यवस्थापन को धन्यवाद, जिन्होंने हमें इस भागवत कक्षा को देने के लिए प्रेरणा दी। लेकिन भागवत अमल पुराण है और हम तो मल से भरे हैं, परंतु भागवत की प्रार्थना में ही लिखा है नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवत की हम प्रवचन नहीं सेवा कर रहे और इस सेवा से हमारा शुद्धिकरण होता है, इसलिए प्रभुपाद ने और आचार्यों ने ये भागवत कक्षा को प्रति मंदिर में आरंभ किया ताकि हम लोग श्रवण के माध्यम से प्रवचनों के माध्यम से अपने आप को शुद्ध करें। क्योंकि शुद्ध विषय पर अशुद्ध व्यक्ति नहीं बोल सकता है, परंतु ये सेवा है, बस जो आचार्यों ने कहा है बस हमें वही दोहराना है, हम क्या कह सकते। इसलिए आप सभी वचनों से विशेषकर राम गोविंद महाराज जी से आशीर्वाद चाहता हूं कि हमें बोलने की शक्ति प्रदान करें, आशीर्वाद दे, और जो भी कोई त्रुटि होगी मेरे से, वैसे तो बहुत त्रुटियां करते आ रहा हूं और अभी भी हो भी सकती है, तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सारे वचनों हरे कृष्णा। भागवत सातवां स्कंद नौवां अध्याय और आठवां श्लोक। यह अध्याय प्रहलाद द्वारा नरसिंहदेव को प्रार्थनाओं से शांत करना, तो आज से इस श्लोक से ही प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं आरंभ हो रही है। श्री प्रहलाद वाच ब्रह्मादया सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतान गतयो वत सांप्रभाये नाराधितुं पुरुगुने अधुनापि विप्रो किं तोष्टुम् अर्हतिं समे हरिरुग्रजाते। श्री प्रह्लाद उवाच ब्रह्मादया सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतान् गतयो वचसां प्रभाये नाराधितुं पुरुगुणरे अधुनापि पिप्लु किं तोष्टुम् अर्हति समहरीर् उग्रजाते श्रीप्रह्लाद उवाच ब्रह्मादया सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतान् गतयो वचसां प्रभाये नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रु किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते पढ़िए माता जी शब्दार्थ श्री प्रह्लाद उवाच प्रह्लाद महाराज ने प्रार्थना की ब्रह्म आदय ब्रह्मा जी तथा अन्यों ने सुरगणा उच्च लोक के निवासी मुनया परम साधु व्यक्ति अथ भी अर्थात चारों कुमारों इत्यादि सिद्धा जिन्होंने सिद्धि या पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है सत्वा आध्यात्मिक स्थिति के लिए एकतान गतया जिन्होंने बिना विचलन के किसी भी भौतिक कार्यकलाप को ग्रहण कर लिया है वचसाम वृत्तांतों या वचनों का प्रवाह है धाराओं के द्वारा न नहीं आराधितुम प्रसन्न करने के लिए पुरुगुणे यद्यपि पूर्णतया योग्य। अधुना, अब तक, अपि, भी, पिप्रुह, समर्थ थे, किम, क्या, तोष्टुम, प्रसन्न करने के लिए, अर्हति, समर्थ है, स, वह, भगवान, मैं, मेरा, हरि, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उग्रजाते, असु परिवार में जन्मा। तात्पर्य और अनुवाद ऐसे भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की, प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की, असुर परिवार में जन्म लेने के कारण यह कैसे संभव हो सकता है कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपयुक्त प्रार्थना कर सकूं? आज तक ब्रह्मा इत्यादि सारे देवता तथा समस्त मुनिगण उत्तम उत्तम वाणी से भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए। यद्यपि ये सारे व्यक्ति सतोगुणी एवं परम योग्य है, तो फिर मेरे विषय में क्या कहा जाए? मैं तो बिल्कुल ही अयोग्य हूँ। जय श्री राधा राज बिहारी की, सीताराम लक्ष्मण भक्त नमाने की, निताई और सुंदर की। अनुवाद को दोहराएंगे। प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की, असुर परिवार में जन्म लेने के कारण यह कैसे संभव हो सकता है कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपयुक्त प्रार्थना कर सकूं? आज तक ब्रह्मा इत्यादि सारे देवता तथा समस्त मुनिगण उत्तम उत्तम वाणी से भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए। यद्यपि ये सारे व्यक्ति सतोगुणी एवं परम योग्य है, तो फिर मेरे विषय में क्या कहा जाए? मैं तो बिल्कुल ही अयोग्य हूं। तात्पर्य, एक पूर्ण योग्य वैष्णव भगवान की प्रार्थना करते समय अपने को अत्यंत तुच्छ समझता है। उदाहरणार्थ चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जगाई मदाई है ते मुहि से पापिष्ट, पूरी शेर कीट है ते मुहि से लघिष्ट। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5.205। इस तरह वे अपने को विष्टा के कीड़े से भी तुच्छ तथा जगाई एवं मधाई से भी अधिक पापी मानता है। शुद्ध वैष्णव अपने विषय में ऐसा ही सोचता है। इसी तरह यद्यपि प्रहलाद महाराज अत्यंत शुद्ध उच्च वैष्णव थे, किंतु वे अपने को परमेश्वर की प्रार्थना करने के लिए अत्यंत अयोग्य समझ रहे थे। महाजनों, इन गता से पंथा, प्रत्येक शुद्ध वैष्णव को इसी तरह सोचना चाहिए। उसे अपनी वैष्णव योग्यताओं का वृथा गर्व नहीं होना चाहिए। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है, त्रिनादुपी सुनी चैना तरो रवि सहिष्णुना अमानीन मान देना कीर्तनीय सदारी। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने को पगडंडी के तिनके से भी तुच्छ माने और विनीत भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे। उसे वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए। उसे मिथ्या प्रतिष्ठा भाव से रहित होना चाहिए। सदैव अन्यों का आदर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसी मनोदशा में ही वह भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन कर सकता है। विनीत हुए बिना आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाना अत्यंत कठिन है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने।
नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्या जगन्नाथाय ते नमः। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौतिकम करतले वेणुकरे कंगनम। सर्वांगे हरिचंदने सुललिते कंठे च मुक्तावली गोपेश्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। तो श्रील प्रहलाद महाराज इस अध्याय में भगवान को शांत करने के लिए प्रार्थना करना आरंभ करते हैं। ये पूरे एपिसोड में प्रहलाद महाराज की सुंदर प्रार्थना, वैसे श्रीमद् भागवतम प्रार्थनाओं से ही भरा हुआ है। कहते कि श्रीमद् भागवतम में करीबन 35 या 32 ऐसा प्रार्थनाएं कुंती की। सबसे प्रथम प्रार्थनाएं कुंती महारानी की रखी गई है, उसके बाद भीष्म की स्तुति, भीष्म की प्रार्थनाएं पितामह भीष्म की, ऐसी 35 प्रार्थनाओं से श्रीमद् भागवतम भरा है। भागवतम केवल कोरा ज्ञान नहीं, तो भावार्थ भावनाओं से पूरी तरह प्रेरित भरित ये भागवतम है। सारे शुद्ध भक्तों के द्वारा भगवान का गुणगान प्रार्थना है इस भागवतम में। और प्रसिद्ध प्रार्थनाओं में से एक प्रार्थना है श्रील प्रहलाद महाराज की। प्रभुपाद हमेशा अपने कई सारे प्रवचनों में श्री प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं को हमेशा उद्धृत करते हैं। तो प्रार्थना भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का सर्वोत्तम और सबसे सरल तरीका, भगवान से प्रसन्न करने का अति उत्तम तरीका प्रार्थना है। इसके अगले श्लोक में प्रहलाद महाराज बोल रहे कि बड़े बड़े मुनिगण ब्राह्मण जो 12 गुणों से युक्त होकर भी आपको प्रार्थनाओं से प्रसन्न नहीं कर सकते कर पाए, तो मेरे जैसा असुर कुल में पैदा हुआ, क्योंकि असुरों के पास सारी असुरी कृत्या होती है, घमंड दंभ गर्व, तो इनके कारण हृदय, क्योंकि प्रार्थना उसी हृदय में प्रेरित हो सकती है या स्फुरित हो सकती है जो हृदय निर्मल है, दैन्यता से भरा है। हमारे आचार्य वैष्णव आचार्यों में एक आचार्य आते नरोत्तम दास ठाकुर, और उनका एक स्पेशल ग्रंथ है, उसमें 33 वैष्णव भजन है जिनका नाम ही दिया है प्रार्थना। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर वैष्णव के चूड़ामणि है जिनकी प्रार्थनाओं में वैष्णव सिद्धांतों का संपूर्ण सार भरा हुआ है। केवल यदि कोई नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थनाओं को प्रतिदिन पढ़ता रहे तो उसे अन्य कुछ शास्त्र पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें सारा वैष्णव फिलॉसॉफी सिद्धांत प्रार्थना भाव प्रेम सब कुछ भरा है। उसमें से एक प्रार्थना हम बीच में गाएंगे नरोत्तम दास ठाकुर की, दैन्यता भरी प्रार्थना है।
तो प्रहलाद महाराज भी अपना यहां दैन्य भाव और प्रपात लास्ट की लाई दैन्य विनीत हुए बिना, नम्र हुए बिना कोई आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाना अत्यंत कठिन है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो श्लोक यहां पर प्रभुपाद ने उद्धृत किया है, और प्रभुपाद कहते हैं कि इस श्लोक को हमारा कंठ का हार बना लेना चाहिए, पर इतना आसान नहीं है। शब्द तो लगते हैं सिंपल, लेकिन बहुत उस स्थिति पर आने के लिए अनेकों अनेक जन्म लग सकते हैं। तुनादुपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुन अमानिन मानदेन कीर्तनीय सधारी, गाने के लिए सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है श्लोक, पर प्रैक्टिकल जीवन में उतारते हुए बहुत बहुत कठिन होता है, क्योंकि हमारा हृदय नाना प्रकार की वासनाओं से, अनर्थों से भरा पड़ा है। इसलिए हम जब प्रार्थना करते तो हमारी प्रार्थनाएं केवल लिप्स तक सीमित होती है, अर्थात होठों तक। हम जो भी प्रार्थना करते हैं वो होठों से, लेकिन यहां प्रहलाद महाराज अपने आप को अयोग्य समझ रहे हैं भगवान की प्रार्थना करने, क्योंकि उस समय ऐसी स्थिति थी कि हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात भगवान अत्यंत क्रोधित हो चुके थे, एकदम भयावना रूप था, क्योंकि उसने हिरण्यकश्यप ने भगवान के प्रिय भक्त प्रहलाद महाराज को इतना सताया, जान मार उनसे मार देने तक, उनकी हत्या करने तक सताया, कितनी बार प्रयास किया, तुमने कितना क्रोध हिरण्यकश्यप का उनके भक्त के प्रति था, तो उसी मारने के पश्चात वो क्रोध से भरे हुए थे। उनको शांत कर पाना देवताओं को भी असभ्य लग रहा था। ब्रह्मा जी कहते हैं लक्ष्मी जी से, बोले आप तो उनकी पत्नी है, जाइए उन्हें शांत करिए। लेकिन अर्धांगिनी होने के बाद भी, नहीं तो हम देखते संसार में पति को अर्धांगिनी शांत हमेशा करती है और करके रहती है, परंतु यहां पर पत्नी भी स्वयं भगवान को शांत नहीं कर पाई, वो भी डर गई। तो प्रहलाद महाराज को ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जाइए, भगवान आपके लिए अवतरित हुए, तो आप शांत करिए। तो प्रहलाद महाराज तो बिल्कुल, क्योंकि जो भगवान का चरण कमलों का शरण ले चुका होता है पूर्ण रूप है ना, मनसा काया वाचा, वो उसके एक गुण तुरंत आ जाता है जो भगवान की शरण लेता है, होता है अभय। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना, डरो मत, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि सुचा, डरो मत, जब मेरे शरण में आओ मतलब डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो भक्त कभी भयभीत नहीं होता है जो वास्तव में भगवान को शरणागत है, उसके मन में डर नहीं होता है। तो प्रहलाद महाराज बिंदास होकर भगवान के चरणों पे जाते हैं, और जैसे ही भगवान नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज को देखते हैं, तुरंत उनका विषय हृदय क्रोध से लुप्त हो जाता है और उनके अंदर दया करुणा अपने भक्त के प्रति दया भाव जागृत होता है, और बहुत प्रेम से उसके सर पर, प्रहलाद महाराज के सर पर अपना वरद हस्त हस्तकमल रखते हैं, और तुरंत सारे शरीर में प्रेम जागृत हो जाता है प्रहलाद महाराज के, और उस प्रेम के और दैन्यता के कारण प्रहलाद महाराज की मुखारविंद से भगवान को प्रार्थना स्फुरित होती है, और ये वो प्रार्थना है। लेकिन प्रार्थना जैसे ही, ऐसा नहीं कि उनके हृदय में, उनके मस्तिष्क में पूरी तरह से प्रेम जागृत हो गया, ज्ञान जागृत हो गया, तो उन्होंने तुरंत प्रार्थना शुरू की, नहीं, प्रार्थना करने से पहले अपनी अयोग्यता को वो घोषित करते हैं। बल्कि शुद्ध वैष्णव अयोग्य नहीं होता है, वो तो परिपूर्ण होता है, 26 गुणों से पूर्ण होता है, परंतु जितना व्यक्ति, वो कहते हैं ना कि जितना पेड़ में फल लगते हैं उतना पेड़ झुकता है, जिस पेड़ में ज्यादा फल होता है वो पेड़ हमेशा धरती की ओर झुकता है, और जिसमें पेड़ नहीं होते वो खड़ा के खड़ा होता है, झुकता नहीं। तो जिसके अंदर भक्ति जागृत होगी, गुण आ गए, वो हमेशा झुकता है। अब प्रहलाद महाराज अपनी दैन्य भाव यहां पर प्रकट करें कि मैं अपात्र हूं आपकी प्रार्थना करने के लिए, बड़े बड़े देवता ब्रह्मा मुनिगण जो सतोगुण में स्थित होने के बावजूद भी, ज्ञान से परिपूर्ण होने के बावजूद भी आपकी प्रार्थना करने में असमर्थ है, परंतु मेरे जैसा असुर कुल में जिसमें कोई भी गुण नहीं है, केवल आसुरी गुण है, ऐसा व्यक्ति आपकी क्या प्रार्थना कर सकता है। तो इस वाक्य से प्रहलाद महाराज की दैन्यता भाव प्रदर्शित हो रहा है और यही है भक्ति के प्रति का आगे बढ़ने का और आगे हुए बढ़े हुए वचनों का असली भक्ति प्रदर्शित करने का गुण, दैन्य बिना नम्र, क्योंकि जिसमें भक्ति है, क्योंकि एक सुभाषित है विद्या विनय न शोभते, परंतु वास्तविक विद्या आने के बाद भी बहुत सारे अहंकारी गर्वित हो जाते हैं ज्ञान आने के बाद भी। इसीलिए इन आगे के श्लोक में प्रहलाद महाराज ये भी मेंशन करते हैं कि ज्ञान बल शक्ति सौंदर्य इन गुणों से कभी भी भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। जितने भी भगवान के भक्त बने हैं उन सारे भक्तों के अपनी ये दैन्यता ही प्रदर्शित की है। देखिए प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देश में जलदूत जहाज में बैठ के जा रहे थे तब उन्हें हमेशा विचार सता रहा कि इस पाश्चात्य देश के तमोगुणी वातावरण में कैसा प्रचार कर पाऊंगा। तो अपनी दैन्य भरी प्रार्थना मार्किनी भागवत श्रील प्रभुपाद ने लिखी है ना, नाचाओ नाचाओ प्रभु जो इच्छा तुहार। मैं तो अयोग्य हूं, अपात्र हूं, बुद्धिहीन हूं, कोई भी भक्ति नहीं, नाम तो दिया है भक्ति वेदांत लेकिन भक्ति का लेश मात्र भी मेरे अंदर नहीं है, और आप मुझे ऐसे जगह भेज रहे जहां केवल तमोगुण और कलयुग का साम्राज्य है, ऐसे जगह में मैं कैसे प्रचार कर पाऊंगा, बिना आपकी कृपा के ये संभव नहीं है। तो प्रभुपाद भी प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज यहां पर भगवान की प्रार्थना, ऐसे भागवतम में कई प्रार्थना है भगवान को प्रसन्न करने का, भक्ति का सर्वोत्तम तरीका, और इसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति की परिभाषा में भी यह आया है, अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनारुत्तम, ज्ञान कर्म ये प्रसन्न नहीं कर सकता, इससे परे होना होता है। अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनारुत्तम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलम, इसलिए यहां पर एक वाक्य प्रभुपाद ने दोहराया, महाजन अनुगत्ता सुपन्या अनुकूलेन, महान वैष्णव के अनुगत्य में, प्रेमी भक्त के अनुगत्य रह में उनमें किस प्रकार से भक्ति की, उस भक्ति को दोहराना है, उसके पदचिन्हों पर चलना है, ना कि हमारा विद्वान बनने के लिए ज्यादा शास्त्रों का अध्ययन करना है, उससे हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करके या बहुत कलेक्शन करके हम भगवान को प्रसन्न कर पाए, नहीं। इन सारी भौतिक जो बाह्य दृष्टि से बहुत अच्छी लगती चीजें, ये चीजें हमें कभी कभी गर्वित, इसीलिए कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में वो श्लोक है, भगवान कैसे प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए मैं 35 प्रार्थनाओं से एक एक प्रार्थनाओं को हम आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम क्या भागवत के बोल सकते हैं, लेकिन जो स्वयं महान, इसलिए महाजन एन गतासुपंता से हम चलेंगे। एक वृंदावन में सुंदर एक भक्त ने पुस्तक लिखा है जिनका नाम ही है प्रेम स्तुति। इस पुस्तक में जितनी भागवत की प्रार्थना है उससे उत्तम उत्तम प्रार्थनाओं को इसमें संग्रहित किया गया है। तो प्रयास करेंगे 15-20 मिनट में कितनी प्रार्थना हमसे पढ़ी जाती है, क्योंकि उनको सुनने से ही हमारी भक्ति और तीव्रता से बढ़ सकती है और हमें पता चल सकता है कि भगवान की प्रार्थना करें कैसे। वैसे प्रार्थना तो सभी करते हैं, अभी देखे आने वाले दर्शनार्थी भी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना क्या होती है ये आचार्यों से सीखने को मिलता है। हम प्रार्थना करते हैं स्वार्थमयी प्रार्थना, हे भगवान मेरे दुख को दूर कर दो, मेरे को लॉटरी लगा दो, धन दे दो, अभी एग्जाम चल रही है मुझे पास कर दो, ये भी प्रार्थना है ना। लेकिन हमारी प्रार्थना स्वार्थ से प्रेरित होती है। कुछ ऐसी प्रार्थना करते हैं, एक स्टोरी आता है, एक व्यक्ति था शिवजी का भक्त था और शिवजी से प्रार्थना करता है, भक्ति करता है, प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे धन दे दो अधिक से अधिक। तो शिवजी सपने में प्रकट होते, मैं तुम्हें दूंगा लेकिन तुम्हारे पड़ोसों को उससे दुगना दूंगा, मंजूर है? तो बोले चलेगा। तो प्रार्थना करता है, भगवान मुझे एक गाड़ी दे दो, उनको एक मिलती, पड़ोसी को दो मिलती, भगवान मुझे 10 लाख दे दो, इसको 10 लाख मिलता है, उसको 20 लाख मिलता है, तो उसको दुगना मिलता है, तो ये ईर्ष्या होता है। तो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो उस सामने वाले की। तो ऐसी भी प्रार्थना करते लोग द्वेष से भरी, लालसामयी, इसे भागवता इसे लिखा है आचार्य ने लालसा में प्रार्थना, दैन्य में प्रार्थना, कुछ लोग द्वेष भरी भी प्रार्थना करते हैं कि इसका नुकसान हो जाए तो भी प्रार्थना है, लेकिन ऐसी प्रार्थना को भगवान प्रसन्न नहीं होते, स्वीकार नहीं करते। तो प्रार्थना क्या होती है, प्रार्थना किस तरह की जाती है, ओ तो हमें एक बार रामरूप क्लास दे रहे थे कि भागवतम की प्रार्थनाओं को हमने, भले हमारे अंदर भाव नहीं है, हम प्रार्थना करने के योग्य नहीं है, क्योंकि हृदय प्रार्थना करने के लिए अभी प्रेरित नहीं है, हमारा हृदय हमेशा वासनाओं से भरा है, इसलिए प्रार्थना नहीं हो सकती है। हम प्रार्थना करते हैं कि मेरे कष्टों को, मेरे दुखों को, मेरे अनर्थों को नष्ट कर दो, लेकिन प्रार्थना है वास्तविक भगवान के गुणगान करना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने भावों को व्यक्त करना, उसी के कहते हैं प्रार्थना। और हम जो करते हैं वो प्रार्थना ही है, हम दुखों से कष्ट दूर करने के लिए भगवान को परेशान करते हैं, है ना। लेकिन असली प्रार्थना है भागवतम में, जैसे कुंती महारानी कहती है जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी एद माध मद प्रमाण, उसमें आगे के श्लोक में कहते हैं अकिंचन गोचरा, उसमें एक शब्द है कि भगवान आप जन्म ऐश्वर्य श्रुति इससे इस मद हो सकता है आपको प्राप्त नहीं किया, लेकिन आप वास्तव में किसके है अकिंचन गोचरा, जो भौतिक दृष्टि से एकदम कंगाल है, एकदम पतित है, उनके भगवान है और उनकी प्रार्थनाओं को भगवान सुनते हैं, जो अपने आप को अकिंचन समझते हैं, अपने आप को बहुत नम्र तुच्छ पतित होकर। इसलिए इसमें एक प्रार्थना दी है किसकी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इतने महान वैष्णव जिन्होंने चैतन्य चरितामृत जैसे इतने सुंदर और महान ग्रंथ की रचना की, और ग्रंथ रचना करने से पहले क्या कहते हो, जगाई मदाई है तो मुही से पापिष्ट, पुरुषेर कीट है तो मुही से लगिष्ट, मतलब मैं मल का कीड़ा हूं, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है कि यदि हमें कोई कहे कि आपका मल का कीड़ा हूं तो मानेंगे, हम बोलेंगे बदमाश, मेरे को इतना बोलता है गंदा, हम उसको तुरंत प्रतिउत्तर देंगे। लेकिन देखिए शुद्ध वैष्णव अपने आप को कितने दैन्यता पर, कितनी नम्रता पर लाते हैं, तो हमारे लिए यही प्रेरणा है कि हम भी ऐसी प्रार्थना करने के लिए तभी प्रेरित होंगे जब हम इसी प्रार्थनाओं को दोहराएंगे। अमृत इसलिए भगवान के सामने खड़े होना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु में 64 भक्ति के अंगों में एक अंग ये भी लिखा है कि हमें भगवान के समक्ष जब खड़े होते हैं तो आचार्यों की प्रार्थनाओं को दोहराना चाहिए। जैसे प्रभुपाद देखिए एक प्रार्थना हमेशा अपने भजनों में, अपने प्रवचनों में दोहराते थे और इतने गहराई से दोहराते थे, जब हम घर में थे तो आत्मा प्रोग्राम लगता था, तो आत्मा प्रोग्राम स्टार्ट होता था तो प्रभुपाद की ये प्रार्थना शुरू होती थी, कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्देव विसतु मे मानस राज हंसम प्राण प्रयाण समय कपवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते, राजा कुलशेखर की प्रार्थना है। तो प्रभुपाद भी देखिए इतने महान भक्त होने के बाद भी वो भी बड़े बड़े भक्तों की प्रार्थना को ही दोहरा रहे। इसलिए भक्ति कोई अलग से कुछ करने की चीज नहीं है, बस जो दिया है उसे रिपीट करो। इसलिए भागवत हम कक्षा देते हैं, बस इसी को रिपीट करना है। क्यों, ये हमें भक्ति प्रदान करेगा, हमारे हृदय को शुद्ध करेगा, हमारे मस्तिष्क को शुद्ध करेगा, जिससे भी हम आगे चलकर हम भी भगवान की प्रार्थना भविष्य में कर सकते हैं, हाँ यदि इच्छा है तो। तो यहां पर पहली प्रार्थना भागवतम में कुंती महारानी से भी पहले प्रार्थना करती उत्तरा, पाहि पाहि महायोगे देव देव जगतपते नान्यत्वत् भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। तो इस प्रार्थना में कहते हैं उत्तरा ने कहा, हे देवो के देव जगत के स्वामी, आप सबसे महान योगी है, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि आपके अतिरिक्त मुझे इस द्वैतपूर्ण जगत में मृत्यु के पास से बचाने वाला अन्य कोई नहीं है, है ना। तो संकट काल में की गई ये प्रार्थना है, जब आपत्ति आती है तो हमें भगवान की शरण में जाके प्रार्थना करनी चाहिए। तो उत्तरा जब उसके ऊपर इतना घोर संकट आया, ब्रह्मास्त्र उसके गर्भ पर छोड़ा गया अश्वत्थामा के द्वारा, तब उसने वहां से पलायन नहीं किया बल्कि भगवान के शरण में गए। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम रज, मेरी शरण में आओ, और भगवान के शरण में जाना ही सर्वोत्तम मार्ग है। तो ये पहली प्रार्थना में संकट की स्थिति पर भगवान को याद कर रही है उत्तरा। दूसरी प्रार्थना
कुंती महारानी की है, इसमें कहती है,
नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थितम।
और कहती कुंती महारानी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप आदि पुरुष हैं, इस भौतिक जगत के गुणों से निसंग रहते हैं, आप समस्त वस्तु के भीतर बाहर स्थित रहते हुए भी सबके लिए अलक्ष है।
तो कुंती महारानी भी ये भी कहती है, हम तो श्रीया है, श्रीयों को कम बुद्धिमानी समझा जाता है, तो कुंती महारानी ये कहती है कि हम तो श्रीया, आपका क्या गुणानिवरण कर सकती है। इसलिए भगवत गीता में श्रीया वैश्यस्तता तेपि अंति परम गति, तो श्रीया पतित या सॉरी कम बुद्धिमान होने के बावजूद भी सर्वप्रथम भागवतम में प्रार्थना किसके, दो श्रीयों की है। भगवान वो नहीं देखते कि आप कितना ज्ञानी है, कितना बुद्धिमानी है, कितना शक्तिशाली है, वो भगवान को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। भगवान को प्रसन्न कर सकता है अपने आप को दैन्य मानने वाला व्यक्ति, अपने आप को अत्यंत तुच्छ समझने वाला व्यक्ति भगवान के सबसे नजदीक होता है। इसलिए भागवतम में श्रीयों का, श्री पुरुष तो ये संसार में है लेकिन श्रीयों की प्रार्थनाओं को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। पितामह भीष्म इतने ग्रेट धनुर्धर महान योद्धा, तभी भी उनकी प्रार्थना सेकंड थर्ड पर रखा गया, और क्यों, दैन्यता, श्रीयों में वास्तविक नम्रता होती है, वास्तविकता होती है, उन्हें दया, भगवान ने 10 क्वालिटी गीता में योजन की, ये स्वयं भगवान है श्रीयों के अंदर, तो दया भाव श्रीयों के अंदर पुरुषों से अधिक होता है, उनका हृदय पुरुषों से अधिक कोमल होता है। इसलिए भगवान के देखो आजू बाजू में किसको स्थान है, गोपियों को, अष्ट सखिया श्रीयों को, और हमारे आचार्य भी कौन है, वो भी प्रकृति है, श्रीया ही है, रूप गोस्वामी मंजीरी है, सब है। तो हमारा वैष्णव सिद्धांत, वैष्णव गौड़ीय हमें यही भाव सिखाता है, हमें गोपी भाव, गोपी भरतुर पद कमल यो दास दासानुदास। तो प्रार्थनाएं दीनता से, कोमल हृदय से है ना प्रकट हो सकती है, तो इनकी प्रार्थना है। दूसरी प्रश्न में, विपदा संतता शश्व तत्र तत्र जगत गुरु भक्तो दर्शनम यत्साद पुनर्भवन दर्शनम। तो कुंती महारानी प्रार्थना करती कि मुझे बारंबार, मैं चाहती हूँ कि ये सारी विपत्तियां फिर आए जिससे हम आपको पुनर्दर्शन कर सके, क्योंकि आपके दर्शन का यह अर्थ है कि हमें बारम्बार जन्म मृत्यु को नहीं देखना होगा। तो कुंती महारानी क्या प्रार्थना कर रही, अपने ऊपर संकटों को और आने देने के लिए प्रार्थना कर रही है, और हम सब लोग प्रार्थना करते हैं संकटों को, भगवान हमारे बीच के संकट है इसको जाने दो, है ना। लेकिन शुद्ध भक्त की प्रार्थना है कि संकटों को आने दो, और हम प्रार्थना करते हैं संकटों को, इसलिए हमारी प्रार्थनाएं वो उत्तम प्रार्थनाएं नहीं होती है। असली प्रार्थना संकट आने दो, संकट आने से क्या होगा, हम पुनः पुनः भगवान के शरण में जाना जाएंगे और बारंबार भगवान की कृपा की याचना करेंगे, और ऐसी कृपा की याचना करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं कि हाँ ये मेरे शरण में आया है और मुझे पुकार रहा है, आर्त पुकार, और तब भगवान भागते भागते आते हैं। गजेंद्र है ना, तो पशु था, लेकिन उसी में भी उन्होंने आर्त प्रार्थना की, भगवान को पुकारा और भगवान चले आए। उसकी नेक्स्ट प्रार्थना है भीष्मदेव की, शित विशिखन अतो विशीर्ण दंश शत जपरिल लुप्तम आतताइनो में प्रसभम अभिसार मद्वार्थम स भवतु मे गतिर मुकुंद। जो मोक्ष के दाता भगवान श्री कृष्ण मेरी परम गति हो, युद्ध क्षेत्र में मेरे पैने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध होकर उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, उनका क्यूवस तितर बितर हो गया और उनका शरीर खून से लथपथ हो गया। भगवान का शूर रस का वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक में, भीष्म पितामह भगवान का वर्णन कैसे कर रहे हैं, शूर रस में है ना। भगवान शस्त्र लेने की प्रतिज्ञा न उठाने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन भीष्म पितामह ने अपने शौर्य से भगवान को वो भी प्रेरित कर दिया। क्यों, भगवान को वो शूर रस का आनंद पितामह भीष्म और वो शूर रूप का भगवान का जो श्रृंगार था वो देखना चाहते थे। इसके पीछे ये भाव है, आचार्य लिखते हैं कि वो उठाने के लिए प्रेरित किया क्योंकि भगवान को देखना चाहते थे वो सुंदर रूप को, क्योंकि एक क्षत्रिय का भाव हमेशा शूरता से भरा होता है, तो उनकी प्रार्थनाएं भी वैसे शूरता भरी होगी, तो ये प्रार्थना शूरता भरी है। तो भीष्म पितामह भीष्म शूरता भरी प्रार्थना करते, क्योंकि शूर, क्योंकि 12 रसों में एक रस है शौर्य है ना, श्रृंगार रस, शौर्य रस, हास्य रस, ऐसे 12 रस है, 7 7 गौण है, 5 प्रमुख है, शांत दास्य साक्य ये। तो ये शौर्य रस का आनंद ये क्षत्रिय लेना चाहते, इसलिए शौर्य रस में प्रार्थना की है पितामह विष्णु ने। देवस्तुति, उसके बाद प्रार्थना आती भागवतम में, नमाम ते देव पदार विंदम प्रपन्ना तापोप शम तपत्रम यन मूल केता यतयो अंजसोरु संसार दुखम बहिरुत्क्षिपवंती। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आपके चरण कमल शरणागतों के लिए छाते के समान है, जो संसार के समस्त कष्टों में उनकी रक्षा करते हैं। सारे मुनिगण उस शरण के अंतर्गत समस्त भौतिक कष्टों को फाकते हैं, अतः हम आपके चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं। तो देवता, जब भगवान इस पृथ्वी पर अवतार लेने वाले थे, और अवतार लेने से पहले सारे देवता सिर सागर के किनारे जाकर ये प्रार्थनाएं भगवान को अर्पित करते हैं। उसके बाद चार कुमारों की प्रार्थना है, काम भव स्वजन निरयेशु नस्ता चेतो लिवद्दधि लुते पदयो रमेत वाचंच नस्तुल सविविद्ध ते अंग्री शोभा पुर्येत ते गुणगुणैर्दि कर्णरंध्र। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब तक हमारे हृदय तथा मन आपके चरण कमलों की सेवा में लगे रहे, हमारे शब्द सुंदर बनते रहे, जिस तरह आपके चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी दल सुंदर लगने लगते हैं, तथा जब तक हमारे कान आपके दिव्य गुणों के कीर्तन से पूरित होते रहे, तब तक आपका आप जीवन की जिस किसी भी नार की स्थिति में हमें जन्म दे सकते हैं। ये प्रार्थना में सनत कुमार भगवान के कहते, आप किसी भी स्थिति में रखें, लेकिन एक एक कार्य जरूर करिए, हमारे जितनी इंद्रियां हैं सब आप में लगी रहे। जब इंद्रियां लगी रहेंगे तो संसार के किसी भी क्षेत्र में रहिए, चाहे नरक में क्यों ना रहे, नरक में रहते हुए भी नरक नरक नहीं लगेगा, वो भी वैकुंठ लगेगा। क्यों? क्योंकि तकलीफ कौन देती है? हम स्वर्ग में भी रहेंगे लेकिन इंद्रिया उत्तेजित है तभी परेशान है, क्योंकि इंद्रिया जब भगवान के चरणारविंदों में लग गई तो संसार की किसी भी स्थिति में हम रह सकते हैं। ये प्रार्थना में सनत कुमार हमें ये सिखा रहे कि हम ऐसी प्रार्थना करें कि हमारी इंद्रिया संपूर्ण काया वाचा मनसा संपूर्ण भगवान के चरणों में लगी रहे, जिससे हम किसी भी विकट परिस्थिति में अपने आप को शांत रख सकते हैं, भगवान के प्रति भक्ति कर सकते हैं। कर्दम मुनि की स्तुति, ऋषि उवाच, जुष्टम बता अखिल सत्व सराशे संसिद्ध क्षणोस्तव दर्शनान यद दर्शनम जन्म बिरीद सिद्धि राशास्तते योगिनो रूढ़ योगा। कर्द मुनि ने कहा, हे परम पूज्य भगवान, समस्त सत्वों के आगार आपका दर्शन प्राप्त करके मेरी दर्शन की साथ पूरी हो गई है। महान योगी जन बारंबार जन्म लेकर गहन ध्यान में आपके दिव्य रूप का दर्शन करके आपकी आकांक्षा करते हैं। तो बहुत सारी प्रार्थना है, समय नहीं है, एक उद्धव की प्रार्थना है, विद्रावितो मोह महांधकारो य आशितो मे तव सन्निधाता विभावसो किम नो समीपगस्य शीतम तमो विप्रभवंत जाद्यम। श्री उद्धव ने कहा, हे अजन्मा आदि भगवान, मैं मोह के गहन अंधकार में गिर चुका था, किंतु आपकी दयामयी संगति से अब मेरा अज्ञान दूर हो चुका है। निसंदेह शीत अंधकार तथा भय से उस पर किस तरह अपनी शक्ति दिखा सकते हैं जो तेजवान सूर्य के निकट पहुंच गया है। हे महायोगी, आपको नमस्कार है, मुझे शरणागत को आप उपदेश दे कि मैं किस तरह आपके चरण कमलों के प्रति अनुन्य अनुरक्ति पा सकूं। तो हमें भगवान से यही प्रार्थना, जैसे प्रहलाद महाराज प्रार्थना करे, हमें प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद भी हर दिन प्रार्थना करते थे। एक बार प्रभुपाद भगवान के सामने खड़े थे और प्रार्थना कर रहे थे, तो एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं, आपको क्या प्रयोजन प्रार्थना करने की, आप तो शुद्ध भक्त हैं, तो आप प्रतिदिन में देखता हूं आप भगवान के पास जाते हो प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप क्या प्रार्थना करते हैं? तो प्रभुपाद बोलते हैं, मैं कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, आपकी माया से मुझे हमेशा बचा के रखो। तो प्रभुपाद वो प्रार्थना के लिए अपने शिष्यों को सिखा रहे कि तुमको भी प्रार्थना। प्रभुपाद कहते थे कि मुझे एक ही डर है अपने शिष्यों से, कि वो माया से नहीं डरते, यही सबसे बड़ा डर था प्रभुपाद, है ना, कि इसलिए वो उस प्रार्थना से वो उस भक्तों को सिखा रहे थे कि प्रार्थना करो भगवान मुझे अपनी माया से बचा के रखो। तो प्रभुपाद ये प्रार्थना करते थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर का दैन्यमय प्रार्थना है, ये उनका भजन है, 33 भजनों में से एक सुंदर भजन है जिसे दैन्यमय प्रार्थना कहा जाता है। उस सारे भजनों के संग्रह का किताब का नाम ही है प्रार्थना। तो मुझे इतना संगीत आता नहीं है गायन, तभी भी मैं खाली पढ़ता हूं। हरि हरि विफले जन्म गोवाइनो, मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। तो वो प्रार्थना करे कि मनुष्य जीवन पाकर भी भगवान जानबूझकर विष खा रहा हो राधा कृष्ण का भजन न करके। जो लोग राधा कृष्ण का भजन नहीं करते हैं वो जानबूझकर विष खा रहे, ये प्रार्थना में वो कह रहे। गोलोकर प्रेम धना हरिनाम संकीर्तन रति ना जन्मी ले केनताए, संसार विषानले दीवानिशी हियाजिले जुड़ाई ते न कोनो उपाय। उसमें कहते कि गोलोक वृंदावन, ये गोलोक वृंदावन वृंदावन से ये हरे कृष्ण महामंत्र प्रकट हुआ है, ऐसे दिव्य धनी को आध्यात्मिक जगत से आया है, मैं कितना अभागी हूं, अमृत अमृता विषयी और आनंद विषय के जीवन में मुझे जरा भी रुचि नहीं है। इस धकधकती अग्नि संसार दावानल में मेरे अंतकरण को मैं केवल जला रहा हूं, इसीलिए उससे छुटकारा पाने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। और मेरा मन और शरीर और सब आप में आसक्त हो जाए और इस आनंद का उपभोग मैं कर पाऊं। दूसरे कहते हैं, बजेंद्र नंदन से सचिसुत हैल से बलराम हैल निताई, दीनहीन यत छिल हरि नाम उद्धारी ल तार साक्षी जगाई मदाई। बता दे कि भगवान ही वही जो सचिसुत थे, वही बजेंद्र नंदन है और इसी कलयुग में सचिसुत बनकर आए हैं। और क्या है, सारे दीनहीनों को पापियों को हरिनाम के द्वारा उद्धार किया है, है? इसका प्रमाण भी देते हैं कि जगाई मदाई जैसे पापियों को हरिनाम के द्वारा उद्धार किया तो मेरा भी उद्धार करें। तो ये बहुत सुंदर भजन है, प्रभुपाद भी हमेशा गाते थे, हरि हरि विफले जन्म गोवाइनो, मनुष्य जन्म पैया, राधा कृष्ण ना भजिया। तो हर आचार्य हमें यही सिखाते कि हमें प्रतिदिन इन प्रार्थनाओं को भगवान के सामने बोलना चाहिए जिसे हमें अशुद्ध भक्ति बने। हम नाना प्रकार के प्रयास करते होंगे लेकिन सबसे उत्तम प्रयास है भगवान को रिझाने का, भगवान की भक्ति प्राप्त करने का, प्रार्थनाओं को दोहराना। भागवतम पूरी प्रार्थनाओं से भरा है। तो यहां पर हम स्टॉप करते हैं। धन्यवाद आपने हमें मौका दिया, कोई त्रुटि हो गई तो बड़े वश तो माफ कर देंगे, दया वाह होता है। प्रश्न तो नहीं कहूंगा क्योंकि उत्तर देना, उत्तर मेरे पास इतना ज्ञानी नहीं हूं कि उत्तर दे सकूं, तो कोई टिप्पणी हो तो आप जरूर कर सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, शिल प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।